ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஆருட பக்தி குண குஞ்சித பாவ சாப யுக்தி சிவஸ்மரண பாண கணைரமோகை நிர்ஜித்ய கில்விச ரிபுன். சத்ரு ஹாத்மே ஆக்கர், தும்ஹார பாப் ஹாத்மே ஆக்கர், கடி தக் பஹச்சனே கே ஜகா தும் ஃபட் சே உடோ, ஹிம்மத் கரோ, உடோ. कुछ भी हो, अब नहीं सोऊंगा, थोड़ा सा हिम्मत करो. एक दिन दो दिन सिर दुखेगा, तीसरे दिन तो फिर चार बजे उठे बिना सिर दुखेगा. यही दृढ़ भक्ति है, यही तुम्हारी साधना में दृढ़ता है. डटे रहो, लग जाओ साहस से. நிர்ஜித்ய கில்வி சரிபொன் விஜயி சுதீந்திரா. சுதியோ மே இந்திரா, சுதீந்திரா சிரேஷ்டா, சிரேஷ்ட சுதி வியக்தி, சுஷ்டு தீ வாலே வியக்தி க்யா கர்த்தே, அச்சே புத்தி வாலே வியக்தி க்யா கர்த்தே, போலோ. வோ இஸ் பாத்கோ ஜானதே ஹே கி சத்ரு மேரே கௌன் ஹே, உன்சே கைசே லடா கே ஜாயே, तो लड़ने की तरीका उनको पता है. इसलिए आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चापम शिव स्मरण बाण. इन सारी साधनों से सुसज्ज होकर सुधींद्र अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, किल्वी सरिपुन अपने पाप रूपी शत्रुओं को निर्जित्य विजयी, उन शत्रुओं को जीतकर विजय श्री को प्राप्त करते हैं. कैसा है वो विजय? सानंदमा बहती, फिर से जीवन वह शत्रु रहित होकर आनंद से विचरण करते हैं, क्योंकि अब शत्रुता है ही नहीं. अब अपना साम्राज्य कैसा हो गया, सुस्थिर राज लक्ष्मी. बस पहले ही थोड़ा संघर्ष लड़ते समय थोड़ा सा साहस करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी. एक बार इनों को इन तैयारियों से जीत लोगे ना, फिर तुम्हारे राज्य लक्ष्मी सायुज्य सामीप्य साष्ट्य सारूप्य आदि जो कुछ भी मोक्ष हो वह तुम्हारी स्थिर रहेगी, फिर वहां से कभी विचलन नहीं होगा. सानंदमा वहती, आनंद पूर्वक वह भक्त वह मुक्त पुरुष सुस्थिर राज लक्ष्मी अपने साम्राज्य का वो पूरा का पूरा भोग कर पाएगा, यानी उपयोग कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा. ये इसी बात को और आगे शंकराचार्य जी ये तो हो गया शत्रु को जीतने की बात. अब दूसरे भाव से भक्ति को प्रस्तुत करते हैं. ध्यानांजनेन समवेक्ष्य तम प्रदेशम भीत्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मंत्री दिव्याश्रितं भुजगभूषणं उद्वहन्ति ये पाद पद्ममिहते शिवते कृतार्थः. हम गरीब क्यों हैं, हम दरिद्र क्यों हैं, बोलो? क्योंकि हम साम्राज्य के लिए या खजाने के लिए प्रयत्न नहीं कर पा रहे। छंदों के उपनिषद में एक प्रसंग आता है, उसी से संबंधित यह श्लोक है, या फिर महाभारत में एक प्रसंग आता है उससे ही संबंधित है। कहते हैं एक कोई व्यक्ति था, वो बड़ा गरीब था, दीनहीन था, दरिद्र था, और अपने प्रारब्ध के चलते वह भीख मांगकर दिन गुजारा किया करता था, जीवन यापन करता था, भीख मांगता था, और भीख मांगते हुए दो चार पैसे जो मिले, अक्सर भिखारी लोग जो प्राप्त होता है उसका संरक्षण नहीं करते हैं, जो प्राप्त हो गया वो पी पाके उड़ा दिया, फिर भीख मांगने, उनको पता है ना कि कल भीख मांगने बैठेंगे मिल ही जाएगा, क्यों कल के लिए रखें भाई, है कल के लिए क्यों रखना है, भीख मांगकर आज जो मिला है वो कल नहीं मिलेगा क्या, जिस प्रारब्ध ने आज हमको दिया है दो रुपया, वो प्रारब्ध कल दो रुपया नहीं दिलाएगा, बोलो कल के लिए क्यों रखना है। कुछ भक्त लोग, अपने शुभ चिंतक भक्त लोग, हर साल हम आते हैं 20-25 साल से, या जब जाने लगते हैं, जाने का समय होता है, कुछ माताएं ज्यादा ही प्यार करती हैं, ज्यादा ही ख्याल रखती हैं, तो कोई गाठिया लेके आता है, कोई नमकीन लेके आता है, कोई सेव चूड़ो लेके आता है, कोई खाखरा लेके आता है, कोई बिस्कुट लेके आता है। अब हम कहते हैं कि माता जी ये सब क्या है, अब तो जाने का दिन आ गया है, ये सब इतना सारा, बोले नहीं महाराज लेके जाइए, ये आपको ले जाने के लिए लाए हैं, ये यहां खा लेना, ये पैकेट जो है वो लेके जाना, वहां काम आएगा, वहां खाने के लिए। तो कभी कभी मैं कहा करता हूं, हम नेपाल से जब यहां आते हैं, न खाखरा लेके आते, न बिस्कुट लेके आते, न फरसान लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, सिर्फ प्रारब्ध लेके आते, क्या लेके आते हैं बोलो, समझ में आ गई, सिर्फ प्रारब्ध लेके आते हैं, और वो हमारा प्रारब्ध यहां तुम्हें प्रेरित करके फरसान ला देता है, नमकीन ला देता है, बिस्कुट ला देता है, खाखरा ला देता है, फल ला देता है, कमरों में भरा रहता है। ये व्यवस्था की किसने, बोलो। अब क्या हम यहां जाएंगे तो वो सब व्यवस्था करने वाला प्रारब्ध को छोड़कर जाएंगे, बोलो। यहां जिस प्रारब्ध ने खाने की व्यवस्था मिलाई है, हम जाएंगे तो उस प्रारब्ध को यहीं छोड़कर जाएंगे क्या, बोलिए। प्रारब्ध को तो लेके जाएंगे ना, और उस प्रारब्ध यहां व्यवस्था कर सकता है तो वहां व्यवस्था नहीं कर सकता खाने चीज की, है? फिर यहां से खाने का चीज ढो के चले ये हमारा काम नहीं है, ये किसका काम है ये आप लोगों का काम है, आप लोग प्रारब्ध पर भरोसा नहीं करते हो, तो हम लेके जाएंगे तभी खान को मिलेगा, हम लेके नहीं जाएंगे तो भूखे मरेंगे। अरे भाई केवल प्रारब्ध लेके जाओ, वो प्रारब्ध कहीं न कहीं व्यवस्था करेगा, कुछ न कुछ व्यवस्था करेगा। ये बात अलग है कि तुमके लिए खाखरा व्यवस्था न करे, लेकिन सूखी रोटी की व्यवस्था तो करेगा कि नहीं, बोलो सूचक भाई। तुम तो नेपाल घूम के आए हो ना परसों, इस साल किया कि नहीं तुम्हारे प्रारब्ध ने वहां है नेपाल में? तुम घाघरा लेके तो गए नहीं थे, लेकिन रोटी की व्यवस्था की कि नहीं तुम्हारे प्रारब्ध ने? दाल की व्यवस्था की कि नहीं? सब्जी की व्यवस्था की कि नहीं है? तो करता है महाराज, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक दृष्टांत दे रहा था, वो जो भिखारी दिन भर भीख मांगता था, शाम को खा पी के उड़ा देता था, समझता था कल फिर भीख मांगूंगा आ ही जाएगा। किसी मेरे जैसे कोई व्यक्ति ने उसको जाकर समझा दिया। अरे मूर्ख, अभी तेरे हाथ पांव सब ठीक ठाक है, जवानी है, सब ठीक है, सब के सब उड़ाना नहीं, कुछ बचा के रख, बाद में काम आएगा। तो उसने समझ ली तो कुछ न कुछ बचाना शुरू कर दिया अब हमारे कहने से। तो कहा कि महाराज कुछ वर्षों में कुछ बच गया। बोले इतना बच गया महाराज, अब क्या करो? बोले अभी तक तो तू मंदिर के दरवाजे के आगे ऐसे ही सोया करता था। अच्छा है तेरे पास पैसा हो गया है, गांव के किसी कोने में थोड़ी सी जमीन खरीद ले और एक झोपड़ी बना ले, कम से कम अपना झोपड़ी होगा ना। कल बीमार हो गया, कुछ हुआ तो अपने झोपड़ी में तो बैठ पाएगा ना, नहीं तो पुलिस वाले आएंगे डंडा मारेंगे भाग यहां से, तो फिर आज भागा, फिर आया उधर भागा, उधर मारे उधर भागे। बोले ठीक कहा महाराज, जाके एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। अब वो जमीन के टुकड़े में एक झोपड़ी भी बना ली, वहीं रहने लगा और रोज मंदिर में जाता था, मंदिर के आगे बैठता था, हाथ फैलाता था, मांगता था, कुछ मिले खा पी लेता था और आगे उसी झोपड़ी में सोता था। एक दिन आत्मानंद भी पहुंच गया, कहां उसी भिखारी के, वो छोटा भिखारी है बड़ा भिखारी है ना। महात्मा लोग सुनाते ना, कोई एक व्यक्ति गया राजा के यहां कुछ मांगने के हिसाब से। राजा बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत धन है, उसके यहां मांगूंगा, लाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा, धर्मशाला बनाऊंगा, यूं त्यू त्यू। पहुंचा वहां, पहुंचा तो वो राजा मंदिर के आगे बैठकर मांग रहा था, हे परमात्मा मुझे दे दे, मुझे दे दे, यूं दे त्यों दे यू दे। तो उस भिखारी ने कहा कि ये तो भिखारी है भाई, मैं समझ रहा था मैं ही भिखारी हूं, ये तो और बड़ा भिखारी है। अंतर यह है कि मैं छोटा भिखारी हूं, ये बड़ा भिखारी, ये भी मांग रहा है, और जिससे ये मांग रहा है क्यों ना मैं भी उसी से मांग लूं। तो उसने राजा से न मांगकर वो भी मंदिर में प्रार्थना में बैठ गया, कहते हैं ना। ये कहानी कई बार सुना है तुम लोगों ने। तो इसी रहा आत्मानंद पे गया एक दिन उसी झोपड़ी में भिखारी की मांगने। भिखारी कहता महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, फूटे की कौड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, जब तक भीख मांगने नहीं जाऊंगा तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें क्या दूं। पहाड़ में एक कहावत है, सन्यासी के घर में जोगी पावना, पावना बोलते हैं ना मेहमान, सन्यासी के घर में जोगी मेहमान, ले देख लो क्या मिलेगा उसको। स्वयं मांग कर गुजारा करने वाले के यहां दूसरा मांगने वाला मेहमान बन गया, महात्मा ने देखा कि अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो आज पहली बार तुम्हारे मांगने आया, सुबह सुबह पहले मांगा तो हमारा मुंह क्या बोलते हो है, बोनी बिगड़ गया मांगते ही कुछ नहीं है कहने लग गया तो दिन भर हमारा बेकार जाएगा कि नहीं, बोनी बिगड़ गया। कुछ तो है, कुछ नहीं है। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा तो ओहो, अरे भिखारी तेरे पास जो माल है दुनिया में किसी के पास नहीं। महात्मा तो आश्चर्य लगा, क्या माल है इसके पास। वो भिखारी कहता महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, बोले मजाक नहीं मैं सत कह रहा हूं, तुम्हारे पास जो माल है दुनिया में किसी के पास नहीं, बिल ग्रेड के पास भी नहीं। क्या क्यों हंसे भाई, कम माल है तुम्हारे पास। वह क्या था कि जिस जगह पर उसने झोपड़ी बनाकर वो बैठा था, उस जमीन के नीचे हीरा मोती ज्वारात सब गाड़ के घड़े में गाड़ के रखा हुआ था। महात्मा ने तो उसको देख लिया, इसलिए महात्मा ने कहा तेरे पास तो माल ही माल है। अब वो नहीं देख रहा है, महात्मा तो देख रहा है, वो नहीं देख रहा है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, महात्मा को दिखाई पड़ रहा है, दृष्टि का फर्क है ना। शंकराचार्य इस श्लोक के द्वारा इसी दृष्टांत को पुष्टि करने जा रहे हैं। महात्मा ने जब कहा कि तू जहां सो रहा है, जहां पर तेरा बिस्तरा है, उसके नीचे खजाना है, क्या बात बोल रहे हो तुम, बोले मैं सच कह रहा हूं, निकालो उस खजाने को। कैसे निकाले, बोले अब ये झोपड़ी झोपड़ी सब तोड़ फेंको, बिस्तरा को निकाल के बाहर फेंको, झोपड़ी को तोड़ो और ले आओ फावड़ा, खोद डालो यहां। बोले महाराज बड़े मुश्किल से बनाया था ये झोपड़ी, इसको मैं सब तोड़ डालूं, बोले हां, और बड़े मुश्किल से जमीन का टुकड़ा खरीदा था ये भी खोद के गड्ढा बना लूं, बोले हां, कुछ पाना हो तो खोना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं बोलो, कुछ खोए बिना कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तुझे खजाना चाहिए तो कर हम जो कह रहे हैं। बड़ा हिम्मत, पहले तो बड़ा मुश्किल हुआ उसको समझाना, विश्वास में लेना बड़ा मुश्किल हुआ। महात्मा ने जब विश्वास में ली तो गया फावड़ा खरीद के लाया, एक किसी से मांगा, तोड़ डाला झोपड़ी झापड़ी, फेंका बिस्तरा और खुदाई शुरू किया, खोदता गया खोदता गया, उसके जब फावड़ा नीचे लगा खट आवाज आया, मिल गया खजाना मिल गया, फटाफट उस खजाने को जहां से आवाज आई थी उसको मिट्टी हटाकर उसने देखा तो क्या मिलना था, कुछ नहीं, एक पत्थर था, बड़ा बड़ा सा पत्थर में उसका हथियार फावड़ा खट लगा। बोले क्या मिला, बोले क्या मिलना महाराज, ये बड़ा सा पत्थर निकला है, अब इस पत्थर से तुम्हारी खोपड़ी फोड़े कि हम अपनी खोपड़ी फोड़े, तुम बोलते हो खजाना मिलेगा, यहां झोपड़ी उजाड़ डाली, अब मिला क्या पत्थर, कुछ नहीं मिला। महात्मा ने कहा कि पत्थर तो मिला तो सही ना, खोदो निकालो उस पत्थर को भी, निकालकर फेंका, फिर खोदा, फिर आवाज आई, तो खट्टा फिर आवाज आई, तो मिट्टी साफ करके देखा तो क्या मिला, बोले एक लोहे का प्लेट मिला, खोदो 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 निकालो उसको। अरे भाई लाखों की जमीन बर्बाद हो गई और हजार की प्लेट लोहे का प्लेट मिला, क्या मिला, बोले बेटा फेंक इसको, इसका इस लोहे के प्लेट का मूल्यांकन मत कर, इसका कोई मूल्य नहीं है, जो खजाना तुमको मिलने वाला है उसके सामने इसका कोई मूल्य नहीं, इसकी मोह न कर, फेंको खुद और पेड़ खोदा तो खोदते गया तो तांबे का मिला लक्षण, अब उसको विश्वास बढ़ता गया, ए कुछ तो मिल रहा है, पत्थर से लोहा, लोहे से तांबा। महात्मा ने कहा कि बेटा फेंक उसको भी। ये विवेक चूड़ामणि में भी शंकराचार्य जी ने इसका संकेत किया है, तो उसको भी फेंका, फिर खोदा तो चांदी का प्लेट मिला। महात्मा ने कहा उसको भी फेंक, खोद फिर, और गहराई में गया तो सोने का प्लेट मिला। वाह मिल गया महाराज, मिल गया महाराज, बड़ा आनंदित हुआ। क्या मिला? बोले सोने का प्लेट मिला। अरे मूर्ख, वो भी काम का नहीं है, फेंक दे और गहराई में जा। जब गहराई में गया तो वास्तव में एक घड़ा जिसके अंदर अनंत अनंत हीरा मोती जवाहरात अरबों खरबों बिल ग्रेड के रुपया से भी ज्यादा। बोलो सुखदेव के पास जो संपत्ति है, क्या वो संपत्ति बिलेट ग्रेड के पास है? बिल ग्रेड के संपत्ति से ज्यादा सुखदेव की संपत्ति थी कि नहीं? बोलो, हैं? स्वीकार किया कि नहीं तुम लोगों ने? सुखदेव की संपत्ति का मूल्य ज्यादा है, महत्व ज्यादा है कि बिल ग्रेड्स का? ये उसको वो खजाना मिला है। तो ये दृष्टांत उस पर यह संकेत कर रहे हैं। अब देखा बाहर निकाला तो फिर अब उसको क्या भीख मांगना पड़ेगा? अब दर दर भटकना पड़ेगा? वो तो सम्राट हो गया, दुनिया में उससे बढ़कर तो और दूसरा है ही नहीं। स्वराट भवती, सम्राट भवती, छांदोग्य उपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद में ये प्रसंग इस तरह कहा है कि प्रतिदिन जीवात्मा उस ब्रह्म में विचरण करते हुए भी ये ब्रह्मानंद है ये अनुभव नहीं कर पाता, ये उसके दुर्भाग्य है। इस तरह छांदोग्य उपनिषद में चर्चा की है। निहितम अक्षत्रज्ञ उपरि उपरि संचरन तो न बिंदे युहु, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। अक्षत्रज्ञ अज्ञानी व्यक्ति ऊपरी ऊपरी संचरण तो ऊपर 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 से भ्रमण तो कर रहा है, वहीं सो रहा है, वहीं घूम रहा है, वहीं बैठ रहा है, लेकिन अक्षत्रज्ञ उस जमीन के नीचे जो खजाना गड़ा हुआ है उसको पता नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है? संचरण तो न बिंदे हो एवं एवं इमा सर्वा प्रजा अहर अहर ब्रह्मम गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न बिंदे हो। प्रतिदिन ये क्षेत्रज्ञ प्राज्ञ नामक क्षेत्रज्ञ सुसुप्ति अवस्था में पहुंचता है, लेकिन बड़ा आनंद से सोया तो कहता है लेकिन यही ब्रह्मानंद है ये नहीं जानता, ये अपना ही आनंद है ये नहीं जानता है, इसलिए फिर जागृत में भटकने लगता है विषयों के प्रति। शंकराचार्य जी कह रहे हैं जमीन के अंदर गड़ा हुआ संपत्ति देखने के लिए आंख चाहिए, और आंख होने मात्र से दिखाई नहीं पड़ेगा। हो तंत्र में कहा जाता है, तांत्रिक लोग कुछ अंजन बनाते हैं वनस्पतियों से, कुछ विशेष वनस्पतियों से आंख में लगाने के लिए अंजन होता है ना, सूरमा, वो बनाते हैं और उसको विशेष तिथि में उसको तंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, और तंत्र द्वारा अभिमंत्रित करने के बाद उस सूरमा को आंख में लगाते हैं तो गाढ़ अंधकार में भी उनको उसी तरह दिखता है जैसे आप उजाले में देखते हो। उस अंजन की विशेषता है। उधर संकेत किया शंकराचार्य, देख इसलिए अंजन की बात कर दिया। कौन सा अंजन है? ध्यान अंजन। ध्यान को वो अंजन के रूप में तुम प्रयोग करो। ध्यानांजनेन समवेक्ष तम प्रदेशम, ये देख लो। अंजन लगाने के बाद तो अंधकार में भी उसको इसी तरह दिखता है जिस तरह तुमको उजाले में दिख रहा हो। तम प्रदेशम भित्वा, अंधकार तुम्हारे दृष्टि को बाधक नहीं कर सकता है वो अंजन लगाने के बाद। महाबली भी ही ईश्वर नाम मंत्र ही, तब शरीर रूपी जमीन में शिव रूपी खजाना, शरीर रूपी जमीन में परमात्मा रूपी खजाना गड़ा हुआ है और क्षुद्र विषयों में इंद्रियों के पीछे लगकर संसार में भटक रहा है। खजाना कहां है? शरीर रूपी खेत में वो खजाना गड़ा है, वो वहीं रह रहा है, इसी शरीर में रह रहा है, लेकिन उसको न जानने के चलते क्या हो रहा है कि क्षुद्र विषयों के प्रति इंद्रियों के पीछे लगकर भटक रहा है दीनहीन होकर। अब गड़ा हुआ धन देखने के लिए तो आंख में अंजन लगानी पड़ेगी ना भाई, है? तो अंजन क्या है? ध्यान अंजन। शिव ध्यान रूपी जो अंजन है वह तुम आंख में लगा लो तो समवेक्ष तमह प्रदेशम। वेदांत तो तुम लोग सुनते हो, आवरण शक्ति से ढका हुआ है। कूटस्थ साक्षी किससे ढका है? माया के आवरण शक्ति से ढका हुआ है। इसीलिए जहां तुम रहते हो वही हुआ है, जहां वो है चाहे वही तुम हो। इसीलिए तो किसी ने कहा ना, मैं और मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं, मैं और मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं, किस्मत की खूबी है दर्शन को तरसते हैं। बोलो, जिस हृदय में तुम रह रहे हो उसी हृदय में परमात्मा भी तो रह रहा है, लेकिन आज तक एक ही कमरे में रहते हुए भी दर्शन नहीं हो पा रहा है। किसके चलते? अविद्या के पर्दे के चलते। वही तम प्रदेश हम, ये अविद्या ही यहां तम है, और वो अंधकार के चलते तुम्हारी साधारण वृत्तियों से वो दिख नहीं रहा है। तब तुम्हें वो अंधकार में भी वो खजाना दिखे इसके लिए विशेष चक्षु चाहिए, वह है ध्यानांजना। इसलिए विशेष वृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। उस विशेष वृत्ति को शंकराचार्य जी ने ध्यान कहा। ध्यानांजनेन समवेक्ष कहां? तम प्रदेशम भीत्वा। ले जी, वो अंजन लगाने के बाद तो उसको अंधकार तो उसको आवृत कर ही नहीं सकता है। महाबली भीर ईश्वर नाम मंत्री, अब उसको पता चलेगा कि खजाना तो यही है, तो खोदना पड़ेगा कि नहीं है? तो खोदने के लिए फावड़ा क्या है, है? महाबली भी ईश्वर नाम मंत्री, उस परमात्मा के नाम रूपी मंत्र रूपी फावड़ा। कमजोर नहीं हो, महाबली भी वही बलशाली है, वही खोद सकता है, इस आवरणों को भंग कर सकता है, है? जैसे उस दृष्टांत में उसने फावड़ा लाई और खोदा, पांच पांच आवरणों को निकाल के फेंका, यही पंचकोश विवेक ही। वेदांत में पंचकोश विवेक आता है कि नहीं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये तीन क्रमशः अन्नमय कोष पत्थर का है, प्राणमय कोष लोहे का है, मनोमय कोष तांबे का है, विज्ञानमय कोष चांदी का है, आनंदमय कोष सोने का है। इन पांच कोषों के अंदर खजाना है। इनको जब हटाओगे, अथा तो आदेश नेति नेति अतद व्यावृत्ति, तब जाकर आत्म खजाना मिलेगा। उस पर संकेत कर दिया है। वहां पंचकोश विवेक का है, यहां ध्यानांजन आंख में लगाओ, विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, तो ये तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी। फिर वही मूला विद्या से जो आवृत हुआ तो वो मूला विद्या उसको आवृत कर नहीं पाए, ढक ना पाए, मूला विद्या को हट जाए, भित्वा तम प्रदेशम, तो साक्षात हो जाएगा। निकालने के लिए पंचकोश विवेक है ये। और यहां नाम मंत्र जप ही, तो ध्यान और जप, ध्यान से आवरण हटेगा, खजाना का पता चलेगा, और जब से आवरण हटेगा, ध्यान से खजाना का पता चलेगा कि यहां पर खजाना है, और जब से उसको ढकने वाला आवरण हटेगा। ध्यानांजने न समवेक्ष तम प्रदेशम भित्वा महाबलिभिरीश्वर नाम मंत्री दिव्याश्रितम भुजग भूषण मुद्वहंती। कहते हैं जहां खजाना होता है वहां सर्प जरूर रहता है, जहां मणि रहता है ना, खजाना रहता है, वहां सर्प पहरेदार बनकर रहता है। दिव्याश्रितम भुजग भूषण उद्वहंती, सर्प के द्वारा सुरक्षित किए हुए उस खजाने को उद्वहंती साधक भक्त निकाल लेता है, निकाल पाता है। तो कौन से खजाना प्राप्त होता है उसको? ये पाद पद्म मिहते शिवते कृतार्थः, तुम्हारे जो चरण रूपी खजाना उस भक्त को प्राप्त हो जाता है, तब उसके बाद उसका जीवन क्या होता है? कृतार्थ होता है। फिर उसको दीन दरिद्र होकर दुनिया में है भटकना नहीं पड़ता, कृतार्थ हो गया। तो ये साधन सहित साध्य की बात। तो ध्यान और जप, शिव स्वरूप ध्यान और शिव मंत्र का नित्य निरंतर जप ही साधक को शिव चरण रूपी खजाना प्राप्ति में हेतु है। तो ये काम, खजाना यही है, बस जरूरत है सुदृढ़ नाम मंत्र ही, नित्य रूपी जप रूपी कुदाली से फावड़े से खोदो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।